70 AM का हवाला देने पर 4 नए टायरों की इंस्टॉलेशन बिल्कुल मुफ्त करवाएं। ये पेशकश 15 अक्टूबर तक महदूद है। KALTIRE.com
सब का वीकेंड प्लान बनेगा 129 ईस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन जानदा।
अच्छा उत्थे की है
फर्नीचर वेयरहाउस जिना दी फ्राइडे एंड सैटरडे नो होएगी स्पेशल सेल।
फिर ता असी भी जरूर जावांगे।
फर्नीचर वेयरहाउस ते तुहानू तुहाडी पसंद दा फर्नीचर मिलेगा कॉस्ट प्राइस तो भी घट। इस सेल सिर्फ अक्टूबर महीने फ्राइडे अते सैटरडे नू दोपहर 12 तो शाम 7 बजे तक ही होएगी। वधिया फर्नीचर घट रेट ते लैण लई पहुंचो फर्नीचर वेयरहाउस दी सेल ते। एड्रेस दोबारा नोट कर लो 129 ईस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन।
टीम एंड किंग ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन होम्स एंड कॉन्डोज लाए हैं आपके लिए नए और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स। टाउन होम्स इन बर्लिंगटन स्टार्टिंग फ्रॉम 669,000 क्लोजिंग 2022 में। टाउन होम्स एंड सिंगल इन ब्रैम्पटन ईस्ट एंड वेस्ट साइड जिनकी प्राइसेस शुरू हो रही हैं 7 लाख से। फेस्टिवल कॉन्डोज इन वॉन मेट्रोपोलिटन जिनकी प्राइसेस शुरू हो रही हैं 4 लाख से। इसके अलावा स्टोविल और ब्रैंडफोर्ड में नए प्रोजेक्ट्स फॉर एक्सक्लूसिव एंड प्रायोरिटी एक्सेस। प्लीज कॉल प्री कंस्ट्रक्शन टीम बाय हीना रब 416-320-3320 और गो टू precornhouse.com।
ओंटेरियो के स्कूलों को बहिफाजत दोबारा खोलने में हर एक का अहम किरदार है। यही वजह है कि ओंटेरियो की हुकूमत ने डॉक्टरों, सेहत के अहदेदारों, स्कूल बोर्ड और असातिज़ा के साथ मिलकर हमारे बच्चों को महफूज रखने के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया है। मिलकर काम करना हुकूमत के इस मंसूबे में जिस्मानी दूरी, स्कूलों में ज्यादा असातिज़ा, निगरान और नर्सें रखना, मास्क पहनना, सफाई सुथराई और हाथ साफ करने और तलबा और स्कूल के अमले की बेहतरी को यकीनी बनाने के लिए दीगर इकदाम शामिल हैं। मजीद जानने के लिए मुलाहिजा कीजिए ontario.ca/reopeningschools। हुकूमत ओंटेरियो की जानिब से अदायगी करदा।
سامعین کرام، ٹورانٹو کے نوا کے علاقوں میں اب ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا، تو آئیے سنتے ہیں مغرب کی نظم.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
میں ہوں عالیہ ناز کی، آج سیبین کا اہم موضوع ہے. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انڈیا میں اپنا کام بند کر دیا ہے. تنظیم کے بقول وہ مسلسل ہراساں کیے جانے کے بعد ایسا کرنے پر مجبور ہوئی. کووڈ 19 سے ہلاکتوں کی تعداد 10 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی. اقوام متحدہ کی تنبیہ کہ ویکسین کی دستیابی تک مرنے والوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور ایک شامی بچی کا جرمنی میں نئی زندگی کا آغاز. یہی وہ بچی ہے جس نے 5 سال پہلے ویل چیئر پر یورپ کی سرحد عبور کی تھی. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انڈیا میں اپنا کام بند کر دیا ہے. ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس کے خلاف ایک عرصے سے خوف و ہراس کی مہم چلا رکھی تھی. گزشتہ دنوں اس کا بینک اکاؤنٹ بھی پوری طرح منجمد کر دیا گیا تھا. سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل غیر ممالک سے فنڈز انڈیا منتقل کرنے کے قانون کی خلاف ورزی کر رہی تھی، لیکن ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ ایسا سول سوسائٹی کی آواز دبانے کے لیے کیا گیا ہے. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
کشمیر میں حقوق انسانی، دلی کے فسادات اور صنفی نابرابری کے معاملے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل بہت سرگرم تھی۔ حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم نے آج ایک بیان میں کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے اس کا بینک اکاؤنٹ پوری طرح منجمد کر دیا ہے، اس لیے انڈیا میں اس نے اپنا کام روک دیا ہے، سبھی عملے کو کام سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل غیر ممالک سے فنڈ انڈیا لانے کے قانون کی خلاف ورزی کر رہی تھی، حالانکہ اس کی ابھی تک وضاحت نہیں ہو سکی ہے۔ ایمنسٹی کے اہلکار کہہ رہے تھے کہ حکومت دو سال سے اس کی تفتیش کر رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اس دوران سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے ہمیں مسلسل ہراساں کیا جاتا رہا، ڈرایا اور دھمکایا جاتا رہا۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ ملک میں جو فضا بنائی جا رہی ہے وہ حقوق انسانی کے کارکنوں کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ ایمنسٹی کے اہلکار کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ایمنسٹی کا سوال نہیں ہے، حکومت کے ذریعے پوری سول سوسائٹی اور حقوق انسانی کا دفاع کرنے والوں کو خاموش کرنے اور انہیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کئی مہینے قبل ایمنسٹی کے سابق سربراہ آکار پٹیل کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ اس وقت بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے حقوق انسانی کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا،
سرکار کا مسئلہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایسے دباؤ لوگوں پر نہ آئے کہ وہ کھل کے بول نہیں پاتے، یہ سرکار کو دیکھنا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں جہاں پر سرکار نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا ہے۔
انڈیا کی پارلیمنٹ نے حال میں این جی او سے متعلق ایک ترمیمی قانون پیش کیا ہے جس کے تحت غیر سرکاری تنظیموں کے لیے غیر ممالک سے فنڈ لینا اب اور مشکل کر دیا گیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت ان اقدام کے ذریعے سول سوسائٹی اور حقوق انسانی کے کارکنوں کو خاموش کرنا چاہتی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، دلی۔
اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دلی میں مقیم صحافی اور درجہ کار مہتاب عالم سے بات کی جو انڈیا میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ہی اس طرح ملک کیوں چھوڑنا پڑا، اور بھی تو این جی اوز ہیں، وہ کام بھی کر رہی ہیں۔
بنیادی طور پر دو وجہ سمجھ میں، ایک تو یہ کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا جس طرح کے ایشوز لیتی ہیں، مثلاً کشمیر یا پھر ابھی دیکھے دلی فسادات کو لے کر کے جو رپورٹ انہوں نے نکالی، اور یا دوسرے ایشوز ہیں، تو ایشوز کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو دوسری اہم وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کوئی ایشو لیتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایشو ایک بین الاقوامی ایشو بن جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے نئی دلی کو یا انڈیا کو اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، جو خاصا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے۔
انڈیا خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، کیا ملک کے اندر جو جمہوری روایات ہیں اور تنقید کی آزادی جو ہے اس کے کم ہونے کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے؟
لوگوں کو اب احساس ہے کہ اس میں ایک بدکن لگایا جا رہا ہے، لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں مل رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ دو تین سال پہلے تک جب یہ کہا جاتا تھا کہ ملک میں ایمرجنسی جیسے حالات ہیں، تو رام چندر گوہا جیسے پرو ڈیموکریسی جمہوریت پسند اسکالر یہ کہتے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ایمرجنسی کیا ہے، اس لیے آپ ایمرجنسی میں کیا ہوا تھا آپ کو پتہ نہیں، اس لیے آپ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ خدایا ایسی بات نہ کہیں کہ ایمرجنسی جیسے حالات ہیں۔ لیکن اب خود رام چندر گوہا جیسے ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی جیسے حالات ہیں، تو یقیناً یہ تشویش دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں، جو آزادی ہے، وہ دن بدن بولنے کی آزادی، ایک جگہ جمع ہونے کی آزادی، اپنے خیال کا اظہار کرنے کی آزادی، اس میں کمی آ رہی ہے۔
اچھا، لیکن اگر غیر ملکی این جی اوز اس طرح ملک چھوڑ بھی دیں، وہ چلی بھی جائیں، تو مودی حکومت پر ہونے والی تنقید اس سے ختم تو نہیں ہو جاتی نا، تو حکومت اس سے حاصل کیا کرتی؟
تنقید تو ظاہر ہے کہ ختم نہیں ہو جائے گی، لوگ تنقید کرتے رہیں گے، پہلے بھی کرتے رہے، لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ابھی ہندوستان میں جس طرح کی میجورٹی رولنگ گورنمنٹ کو جو حاصل ہے، اس میں اگر یہ باتیں بین الاقوامی سطح پر نہ اٹھیں اور اس کو لے کر کے ایک انٹرنیشنل तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो हिंदुस्तान में और मुल्क के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कंट्रोल में हैं, तो उनके लिए इसको और आगे बढ़ाना और हालात को हालात मतलब जो लोग डिसेंड करते हैं उन पर काबू पाना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
सहाफी और तज़ियाकार महताब आलम से मैंने कुछ देर पहले बात की। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 10 लाख से बढ़ गई है। चीन के शहर वुहान में कोरोना वायरस की वबा फूटने के तकरीबन 10 माह बाद वायरस अब दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में पहुंच चुका है। गैर मामूली तेज कोशिशों के बावजूद अभी तक कोरोना वायरस से बचाव की कोई मुअसर वैक्सीन मौजूद नहीं है। तफसील के साथ काशिफ खान।
नोवेल कोरोना वायरस और इससे पैदा होने वाली बीमारी कोविड-19 के बारे में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जमा किए हुए आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया में होने वाली कुल हलाकतों में से निस्फ तादाद अमेरिका, ब्राजील और इंडिया में होने वाली अमवात की है, लेकिन माहिरीन को खदशा है कि अमवात की असल तादाद मौजूदा आदादोशुमार से कहीं ज्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमरीका में अब तक इस वायरस से 2 लाख से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और वहाँ कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 7 मिलियन से ज्यादा है, जो कि दुनिया में कोविड से मुतासरा कुल अफराद का 5वां हिस्सा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुमार ऐसे लीडरों में होता है जिन्होंने इब्तदा में इस वबा की शिद्दत को महसूस नहीं किया और कहा कि ये नजला जुकाम की तरह का एक वायरस है जो जल्द खत्म हो जाएगा। उसे बार बार चीनी वायरस कहकर पुकारते रहे। ब्राजील का शुमार भी दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला। ब्राजील में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 1,40,000 से ज्यादा है। ब्राजीलियन सदर जायर बोल्सोनारो का शुमार भी ऐसे लीडरों में होता है जिन्होंने कोविड-19 के बारे में संजीदा तर्ज अमल जाहिर नहीं किया। वहाँ वायरस के फैलाव के इब्तदाई महीनों में सेहत के 3 वज़रा को इसलिए उनके ओहदों से हटा दिया गया क्योंकि वो सदर बोल्सोनारो के कोविड-19 के बारे में ख्याल से मुत्तफिक नहीं थे। आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क इंडिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 60 लाख से ज्यादा है। इंडिया में कोरोना से 96,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है और उसका शुमार ऐसे मुल्कों में होता है जहां कोरोना की वबा को रोकने के लिए सख्त इकदाम तो किए गए लेकिन वहाँ भी ये वबा बहुत तेजी से फैलती रही। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कोरोना की वबा से पैदा होने वाली सूरतेहाल को परेशान कुन और 1 मिलियन हलाकतों को एक अज़ियतनाक संगे मील करार दिया है।
हमें उनको नहीं भूलना चाहिए, वो बाप थे, माएं थी, बीवियां, शोहर, बहन और भाई, दोस्त और साथी। इस मर्ज के वहशियाना अंदाज ने दर्द को कई गुना ज्यादा कर दिया है।
कोरोना की वबा से बचाव के लिए वैक्सीन की तैयारी की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई मौसर वैक्सीन मौजूद नहीं है। दुनिया में 200 से ज्यादा मुमकिन वैक्सीन अपने इब्तदाई मराहल में हैं, इनमें से 40 तिब्बी आजमाइश से गुजर रही हैं। आम हालात में वैक्सीन बनाने में कई साल लग जाते हैं। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा पहले ही खबरदार कर चुका है कि वैक्सीन की वसी पैमाने पर दस्तियाबी तक इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 20 लाख तक भी जा सकती है।
5 साल पहले हमारे नामनिगार फर्गल कीन ने नजीम मुस्तफ़ा नामी उस शामी पनाह गुजीन बच्चे की कहानी सुनाई थी जिन्हें पैदायशी तौर पर सेरेब्रल पॉल्सी है। उन्होंने एक मरतबा फिर नजीम से मुलाकात करके जानना चाहा कि उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है। फर्गल कीन की ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सलीम काजी।
मैं सोच ही रहा था कि इस मुश्किल घड़ी में जज्बे से भरपूर नजीम का क्या हुआ होगा।
मैं खलाबाज बनना चाहती हूँ, दूर खिला में कोई दूसरी मखलूक तलाश करना चाहती हूँ और हाँ, मैं मलका से भी मिलना चाहती हूँ।
नजीन सेरेब्रल पेल्सी के साथ पैदा हुई थी और फिर जंग से फरार होकर हलब से 1400 किलोमीटर दूर यूनान पहुँच गई। जब मैं सन 2015 में उसे हंगरी की सरहद पर मिला था तो बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। ये वो लड़की थी जिसने अंग्रेजी टीवी पर गैर मुल्की ड्रामे देखकर सीखी थी।
इस दुनिया में कुछ पाने के लिए आपको लड़ना आना चाहिए, फिर भी मैं इसे एक नई जिंदगी की तरफ सफर समझती हूँ।
हंगरी ने इन लोगों पर अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन नजीन और उसकी बहन नसरीन तमाम मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ती रही और आखिर स्लोवेनिया पहुँच गई। दोनों बहनों से मेरी मुलाकात यहीं पर हुई थी। उस वक्त नजीन की हिम्मत तकरीबन जवाब दे चुकी। नजीन, तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रही हो?
मुझे नहीं पता, मैं तो बिल्कुल खो गई हूँ।
आज 5 साल बाद मैं उससे मिलने जर्मनी के शहर कोलोन जा रहा हूँ। सरहद पर मिले थे।
उस लम्हे उस दिन मुझे झटका लगा कि सूरत हाल कितनी बुरी है।
जर्मनी ने इस बच्ची को अपने आंखों शामजीद कहा, जिसे अपनी माजूरी की वजह से शाम में तासुब का सामना करना पड़ा था, अगरचे उसे अपने कुछ ख्वाब मुलतवी करना पड़े।
मैं अभी यकीनन मलका से मिलना चाहती हूँ और अभी खलाबाजी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैंने जब से स्कूल जाना शुरू किया है तो मुझे पता चला है कि रियाजी में तो मेरा हाल खराब है। लगता है मुझे प्लान बी पर अमल करना पड़ेगा।
नजीन की जिंदगी उस रास्ते की अक्कासी करती है जो मुहाजिरों को लेना पड़ता है। अब नजीन नफ्सियात पढ़ रही है ताकि वो माहिर नफ्सियात बनकर जंग और भूख के सताए हुए लोगों की मदद कर सके। इसके अलावा ये माजूरी के शिकार मुहाजिरों के हुकूक के लिए भी काम कर रही है और अक्वामे मुत्तहिदा में खिताब भी कर रही है।
अमन के दिनों में भी लोगों ने माजूर अफराद को बुला दिया था। आपके ख्याल में हम इस जंग के दौर में क्या तवक्को कर सकते हैं?
ये मेरा घर सब तबाह हो। नजीन के पैगाम की जितनी जरूरत आज है शायद पहले कभी न थी। वो लेस्बोस के जिस जजीरे पर यूरोप में दाखिल हुई थी, वहाँ मोरिया कैंप की तबाही के बाद हजारों मुहाजिरीन बेघर हो चुके हैं। नजीन के अपने वालदैन भी अभी तक तुर्की में फंसे हुए हैं। हफ्ते में एक बार दोनों बहनों की स्काइप पर उनसे बात हो जाती है। वो लोग जर्मनी पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं।
मेरा ख्याल है जो चीज़ सबसे ज्यादा मेरा दिल तोड़ती है वो ये है कि वो लोग मेरे यहाँ की जिंदगी को देख नहीं सकते। वो मुझे रोज स्कूल जाते, यूँ जिंदगी में आगे बढ़ते, अपना मुस्तकबिल सवारते नहीं देख पा रहे।
लेकिन नजीन को उम्मीद है कि शायद हालात जल्द ही बदल जाए और उसके वालदैन अपनी आंखों से देख सकें कि उनकी बेटी किस बहादुरी किस वकार के साथ एक नई जिंदगी बना रही है।
आइए अब हम आपको एक अनोखे गांव की सैर पर ले चलते हैं। गिलगित की बुलंद चोटियों के दामन में ये छोटा सा गांव गली गच्छा कहलाता है। मकामी लोगों का दावा है कि एक मिसाली गांव है। यहाँ लड़कियों की तालीम को तरजीह दी जाती है और गांव में शरह तालीम 97% है। इस गांव की और क्या खसूसियात है आइए देखते हैं हमारे साथी अजीजुल्लाह खान और बिलाल अहमद की इस रिपोर्ट।
चार पाँच साल के हो जाते हैं हमारी इंट्री जो है गर्ल्स गाइड और स्काउटिंग में हो जाती है, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो फीमेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्टडीज़ के ऊपर। अगर मेरे घर में स्पेशली ये कंडीशन है कि मेरे अब्बू ने मेरे भाइयों के ऊपर मुझे प्रेफर किया, जब उनको उनके पास ऑप्शन था कि मेरे भाइयों को यूनिवर्सिटी भेजते या मुझे, तो फिर उन्होंने पहले कहा कि आप जाओ और आप दो तीन साल रहो फिर आपके भाई जाएंगे। ग्रीन हाउस है हमारे गाँव में, वहाँ फीमेल जाके पौधे वगैरह उगाती है अपने लिए भी, और फिर जो एक्स्ट्रा उनकी बचत हो जाके फिर वो मार्केट में सेल करती है। सैबीन में इतना ही। आप चाहें तो हमसे हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर भी रابطہ कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/ देखते रहिए। आलिया नाज़ की कोर्ट इजाज़त दीजिए।
एनआईसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ बहुत ही आसानी से अपने घर से विदेश पैसे भेज सकते हैं, वो भी जीरो डॉलर ट्रांसफर फी पर। आप पैसे ऑनलाइन या सीआईबीसी के मोबाइल ऐप से भेज सकते हैं। आज ही अपना पहला ट्रांसफर करें और पाएं $50। अधिक जानकारी के लिए cibc.com/transfer पर जाएं।
वीकेंड प्लान बनेगा 129 ईस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन जानदा।
अच्छा, उठे की है
फर्नीचर वेयरहाउस जिना दी फ्राइडे एंड सैटरडे नो होएगी स्पेशल सेल।
फिर तो असि भी जरूर जावांगे।
फर्नीचर वेयरहाउस ते तुहानू तुहाडी पसंद दा फर्नीचर मिलेगा कॉस्ट प्राइस तो भी घट। इस सेल सिर्फ अक्टूबर महीने फ्राइडे अते सैटरडे नू दोपहर 12 तो शाम 7 बजे तक ही होएगी। वधिया फर्नीचर घट रेट ते लैण लई पहुंचो फर्नीचर वेयरहाउस दी सेल ते। एड्रेस दोबारा नोट कर लो, 129 ईस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन।
ओंटेरियो के स्कूलों को बहिफाजत दोबारा खोलने में हर एक का अहम किरदार है। यही वजह है कि ओंटेरियो की हुकूमत ने डॉक्टरों, सेहत के अहदेदारों, स्कूल बोर्ड और असातिज़ा के साथ मिलकर हमारे बच्चों को महफूज रखने के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया है। मिलकर काम करना हुकूमत के इस मंसूबे में जिस्मानी दूरी, स्कूलों में ज्यादा असातिज़ा, निगरान और नर्सें रखना, मास्क पहनना, सफाई सुथराई और हाथ साफ करने और तलबा और स्कूल के अमले की बेहतरी को यकीनी बनाने के लिए दीगर इकदाम शामिल हैं। मज़ीद जानने के लिए मुलाहिज़ा कीजिए ontario.ca/reopening schools। हुकूमत ओंटेरियो की जानिब से अदायगी करदा।
लॉबी इंतजार दियां कड़ियां खत्म हुईयां। फ्लाइंग फैशन दा वेयर हाउस पब्लिक वास्ते खुलन जा रहा है ब्रैम्पटन दे विच। जी हां, सनपैक गुदर साहब दे बिल्कुल लागे 11 सनपैक बुलेवार्ड विलियम पार्कवे अते सनपैक दे बिल्कुल कूजे ते, जिथे दुनिया भर दी फैब्रिक, खुला कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा वेयर हाउस कीमतां दे उपर, होलसेल कीमतां दे उपर तुसी खरीद सकोगे। जी हां, फ्लाइंग फैशन वेयर हाउस ओपन टू द पब्लिक। 905-694-9997 ते संपर्क करो। फ्लाइंग फैशन वेयर हाउस।
कार टायर। सर्दियों के लिए गाड़ियों के टायर तब्दील करने हो या नए टायर खरीदने हो तो कार टायर पर जाकर रजिस्टर करें और रेडियो 770 AM का हवाला देने पर 4 नए टायरों की इंस्टॉलेशन बिल्कुल मुफ्त करवाएं। ये पेशकश 15 अक्टूबर तक महदूद है। kaltire.com
WTOR Youngstown Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Mirage Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
सबसे जुदा, सबसे अलग। वो कहते हैं वैसा प्यार जो हमेशा अमर रहता है वैसा था हमारा प्यार, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि अमर होने के लिए जान देनी पड़ती है। कुछ ऐसा था हमारा प्यार जो न जीने देता था न मर।
खुद को तेरी खा Shalom.